the flower, wrap it around. Leave it, Prabhu, leave it. Okay, bring. No, no, Prabhu. No, main utna time bachata hu. Hare Krishna. Ravi Prabhu, leave it. ये इसका नहीं है वो आएगा नहीं हरे कृष्णा पर ये मैंने टाइम जाएगा टाइम लगेगा कैसे जाता है
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
नमो महावदन्याय
कृष्णप्रेमप्रदायते
कृष्णाय
कृष्णचैतन्याय
नाम्ने गौरतुषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्या
प्रभु
नित्यानंद अद्वैत
गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा
सो वी वुड लाइक टू वेलकम ऑल द डिवोटीज ऑन दिस मोस्ट ऑस्पिशियस डे ऑफ श्री गौर पूर्णिमा सभी उपस्थित भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं तो समय बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से हम पूरा मंगलाचरण नहीं बोले हैं और तीन चार मिनट हम एक ये भजन गाने में बिताएंगे और बाकी का जो समय मिलेगा उसमें गौरांग महाप्रभु की कृपा से कुछ बोलने का प्रयास करेंगे और इसके पहले मैं सभी भक्तों से आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा रखता हूँ ये भजन जो है ये वासुदेव घोष द्वारा विरचित है बहुत छोटा सा है चार लाइन का और श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म और उनकी बाल लीलाओं के बारे में यह है इन द कोर्टयार्ड ऑफ सची माता द चाइल्ड विश्वंभर राय प्लेस स्माइलिंग एंड गिगलिंग ही गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हाइडिंग फ्रॉम हिज मदर कवरिंग हिमसेल्फ विथ हिज क्लोथ ही सेज आई एम हाइडिंग सची माता सेज टू विश्वंभर आई डोंट सी यू होल्डिंग द एज ऑफ हिज मदर सारी ही डांसेस अबाउट ऑन tottering feet in skittish manner of a wagtail Vasudev Ghosh says, such extraordinary beauty, seeing the child form of Nimai, the whole world becomes infatuated. Shri Vasudev Ghosh ki, Shri Sachinandanda Gauranga Mahaprabhu ki. Sachiranga nae nache Vishwambhar Rai,
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 Hansi hansi piri piri maya ralukai,
Hansi hansi piri piri
hansi piri piri maya ralukai,
hansi hansi piri piri maya ralukai,
sachi rang nae nache Vishwambhar Rai,
sachi rang nae nache Vishwambhar Rai,
hansi hansi piri piri maya ralukai,
hansi hansi piri piri maya ralukai,
yane vasan भले लुकाई नु
आयने वसन दिया भले लुकाई नु
आयने वसन दिया भले लुकाई नु
आयने वसन दिया भले लुकाई नु
सची बोले विश्वंभर मीना देखी नु
सची बोले विश्वंभर मीना देखी नु
सची बोले विश्वंभर मीना Vishwambhar Rai,
Sachi Rang Nae Nache Vishwambhar Rai,
Hansi Hansi Piri Piri Maya Lukai,
Hansi Hansi Piri Piri Maya Lukai,
Mayer Achal Dhori Chanchal Charane,
Mayer Achal Dhori Chanchal Charane,
Mayer Achal Dhori Chanchal Charane, Nachiya nachiya yae kanjana gamane,
Nachiya nachiya yae kanjana
gamane, Nachiya nachiya yae kanjana gamane,
Nachiya nachiya yae kanjana gamane,
Chiranga nae nache Vishwambhar Rai,
Chiranga nae nache Vishwambhar Rai,
Hansi hansi piri piri mere lukai,
hansi hansi piri piri mere lukai,
Vasudev Ghosh kahe apna shobha,
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 Shishi roop dekhe hai jagmana lobha,
Shishu Rupa Dekhi
Hoye Jagmana Lobha,
Shishu Rupa Dekhi Hoye Jagmana
Lobha, Sachi Rang Nae Nache Vishwambhar Rai,
Sachi Rang Nae Nache Vishwambhar Rai,
Hansi Hansi Piri Piri Maya Lukai,
Hansi Hansi Piri Piri Maya
hati tere tere maya re luka,
hati hati tere tere maya
re luka, hati hati tere tere maya re luka,
hati hati tere tere maya re luka.
This is hide and seek, luka chupi ka khel hai ye, jiski origin bhagwan shri krishna aur gauranga mahaprabhu se hoti hai. आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है. सो हम ये भजन कई बार गाए हैं और सुने हैं। परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो ये कहते हैं कि सब अवतार सार शिरोमणि, भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन सभी में ये सार शिरोमणि है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो प्रकट हुए हैं। और उसके कई कारण बताए गए हैं कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर क्यों आए हैं। कुछ श्लोक लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जीवेर कलमश तम नाश करी बारे, अंग उपंग नाम नाना अस्त्र धरे। तो कहते हैं कि जितने भी भगवान के जो संगीगण आते हैं या भगवान आते हैं तो कई अस्त्र शस्त्र वगैरह लेके आते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु वो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लेके आए हैं, और उनके जो पार्षद है वे उनके अलग अलग प्रकार के शस्त्र है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए तो नवद्वीप में सारा नवद्वीप जो था वो हरिनाम का उच्चारण कर रहा था। कोई भी भगवान के जन्म के समय उनके नाम का उस तरह से उच्चारण नहीं हुआ जिस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय हुआ। तो हम प्रार्थना में कहते हैं, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनको करुणा सागर कहा गया है, करुणा सिंधु कहा गया है, लेकिन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा गया है? परम करुणा। परम करुणा सिंधु भी कह सकते हैं, जैसे ईश्वर परम कृष्ण, तो परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। उसी तरह परम करुणा जो है वो चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु, अगर कृष्ण को हम सिंधु या सागर ओशन कहते हैं, सागर से उनका अगर हम उनको जोड़े तो चैतन्य महाप्रभु एक बादल के समान है, और बादल कहीं भी जाता है वहां पर वो वर्षा करता है, लेकिन सागर से अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? सागर के पास। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने भगवद गीता के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से लोगों को कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, जो जिस तरह मेरे पास आने की कोशिश करता है मैं उसी के साथ उस तरह का व्यवहार करता हूँ। तो इस कलयुग में अगर भगवान श्री कृष्ण आके खड़े हो और ये श्लोक कहे कि जो मेरे पास आएगा मैं उसको भक्ति दूंगा, तो भगवान को अकेले ही खड़ा रहना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं भगवान के पास। तो सिंधु के पास सभी को जाना पड़ता है, लेकिन बादल जो है वो सिंधु का पानी लेके उड़ता रहता है, और उड़ते उड़ते ऐसे देश में भी जाता है जहां पर पानी या समुन्दर नहीं है, और वहां पर भी वर्षा करता है। तो घर पे वर्षा करता है, वृक्षों पे वर्षा करता है, पर्वतों पे वर्षा करता है, और रणभूमि डेजर्ट उस पर भी जाके वर्षा करता है। तो सब सब जगह वो पहुंचता है। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य जो भगवान महाविष्णु और सदाशिव का अवतार है, वे खुद नवद्वीप में लोगों की हालत देख के बड़े द्रवित हो गए, और वे सोचने लगे कि इन लोगों को भक्ति कैसे मिलेगी। सोचो, भगवान असहाय के रूप में खड़े रह के देख रहे हैं कहीं पे, कह रहे ये लोग भक्ति नहीं कर रहे, इनको भक्ति कैसे मिलेगी। और फिर उन्होंने हुंकार लगाई और भगवान कृष्ण को सैया से उठाकर और फिर उनको आने के लिए मजबूर किया। तो भगवान के आने के कई कारण है, कुछ बाहरी कारण है और कुछ आंतरिक कारण है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारे कारणों का व्याख्यान कर सके यहाँ पर, लेकिन भगवान के आने का एक आंतरिक कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे, कृष्ण ने सोचा कि मैं तो रसिक शेखर हूं, अपने आप में आत्माराम हूं, आत्मकाम हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मेरा जो रस है वो मुझे ही नहीं मिल रहा है, तो इस रस को मैं कैसे प्राप्त करूं? मैं सारे रस का स्रोत हूं लेकिन मुझे ही वो आनंद नहीं मिल रहा है, मुझे ही वो रस नहीं मिल रहा है, मेरे दूसरे भक्त और राधा रानी इस आनंद का आस्वादन कर रहे हैं। तो तुकाराम महाराज जैसे के तीन उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि कमल होता है और कमल के अंदर नेक्टर होता है, अमृत होता है, तो क्या कमल उस अमृत का पान कर सकता है? नहीं कर सकता। कौन करता है वो पान? भौरा या मधुमक्खी, वो उस रस का आस्वादन करता है। उसी प्रकार गाय है, गाय के पास दूध है उसके स्तनों में, लेकिन उस दूध का आस्वादन गाय खुद नहीं करती है और कर नहीं पाती है, वो कौन पीता है? बछड़ा पीता है, उसी तरह भगवान जो है वह कमल के समान है और उनके भक्त जो है वह भौरे या मधुमक्खी के समान है, उसी तरह भगवान एक गाय के समान है और उनके भक्त जो है वो बछड़े के समान है। और तीसरी उपमा उन्होंने दी है एक मोती की, कि समुद्र में शिप में मोती रहता है पर वो शिप कभी मोती की माला नहीं पहनता, वो मोती की माला कौन पहनता है? वह लोग जो माला माल होते हैं, तो जो माला माल है वो माला पहनते हैं, दूसरे लोग माला नहीं पहन पाते, शिप माला नहीं पहनता। तो इसके लिए भगवान सोचे कि यार मेरे पास इतना सारा रस है लेकिन उस रस का मैं आस्वादन नहीं कर पा रहा, तो मुझे कुछ करना चाहिए, इस रस का आस्वादन करना चाहिए। और इसी रस का आस्वादन करने के लिए राधा भाव लेके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए ताकि वह अपने रस को चख सके। और एक और उदाहरण आता है जैसे जिह्वा और रसगुल्ला का। रसगुल्ला जो है उसमें बहुत रस होता है ना, सब लोग हंस रहे, सबको रसगुल्ला पसंद है, तो रसगुल्ला में बहुत रस होता है, लेकिन रसगुल्ला उस रस का आस्वादन कर सकता है क्या? नहीं। कौन करती है? जिह्वा करती है। लेकिन जिह्वा जो है उसकी कोई इतनी योग्यता नहीं है, दिखने में भी सुंदर नहीं दिखती है। कभी कोई लोग जीभ निकाल के फोटो निकालते हैं क्या? ना, फोटोग्राफर पूछता है स्माइल प्लीज, पर दे डोंट से टंग आउट करके, और किसी को चिढ़ाना होता है तो हम जीभ निकाल के चिढ़ाते हैं। तो जीभ में कोई योग्यता नहीं है, ना दिखने में सुंदर है, कुछ नहीं है, लेकिन वही जीभ रसगुल्ले का आस्वादन करती है। तो उसी जीभ को रसगुल्ला के आस्वादन करने का जो सौभाग्य प्राप्त है, और चर्म की बनी है, चमड़े की बनी है, चमड़े का पूरा हमारा शरीर है, लेकिन रसगुल्ला आंख में निकलो तो दूसरे आंख से पानी निकलेगा, नाक में डालो तो आंख में से पानी निकलेगा, वो आस्वादन नहीं कर सकते। आस्वादन कौन कर सकता है? जीभ कर सकती है। तो उसी प्रकार भगवान जो है वो रसगुल्ले के समान है और उनके भक्त जो है वो जिह्वा के समान है जो उस रसगुल्ले का आस्वादन करते हैं। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधा भाव द्युति सुविलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, कि राधा भाव लेके भगवान श्री कृष्ण वो यहाँ पर पधारे हैं, हमारे पास आए हैं। तो पहले क्या था, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक है और उस रस का आस्वादन करने के लिए भगवान दो बने, ठीक है ना। हमने सुना है कि पहले भगवान सिर्फ अकेले थे और फिर भगवान ने अपने अंतरंगा शक्ति के रूप में राधा के रूप में प्रकट हुए ताकि वो एक्सचेंज कर सके, आस्वादन कर सके। तो भगवान एक से हुए दो और चैतन्य महाप्रभु क्या हुए? दो से हुए एक, ठीक है। राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और कृष्ण के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं और वही विस्तार वापिस से दो का एक होता है। तो हमने 1-2 का 4 सुना था, इधर 2-in-1 है, दो का एक हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा का भाव लेके वो हमारे पास आए हैं, और वे जब राधा का भाव लेके आ रहे थे तो राधा रानी ने क्या कहा कि अगर मेरे भाव को लेके जाओगे तो पूरे दिन लौटते रहोगे, धरती पे गिरते रहोगे, तो इसके लिए तुम मेरे भाव के साथ साथ मेरी कांति भी ले जाओ, साथ में मेरा कलर भी लेके जाओ। तो इसके लिए राधा रानी का एक नाम है गौरांगी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम है गौरांग, ऐसा उल्टा नहीं है। क्योंकि राधा रानी का नाम गौरांगी है इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब गौर वर्ण में आए तो उनका नाम यह हुआ। और एक और बात है कि वे गौर वर्ण के रूप में क्यों आए, कोई जानता है? हम लोग जो है वो कलयुग के निवासी है और कलयुग के जो निवासी है वो किससे ज्यादा आकर्षित होते हैं? गोल्ड से, सोने से आकर्षित होते हैं। और सारा का सारा जो कली है वो सोने में बैठा हुआ है, तो भगवान ने सोचा कि ये जीव कली के मतलब प्रताड़ित सारे जीव सोने के अंदर अपना और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कई बार हम प्रीचिंग के लिए किसी को बताते हैं तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है आने के लिए, प्रोग्राम में दूसरी चीज में काफी इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है ना। तो जो भोग की वस्तु है वो व्यक्ति अभी कर लेता है, सत्संग को कल पे छोड़ देता है कि भाई कल करूंगा, अभी क्या है, बहुत टाइम है। तो भगवान ने सोचा कि ये भक्त, ये जो लोग है इस तरह से मानेंगे नहीं, तो इनको थोड़ा ट्रिक करना पड़ेगा। तो गोल्डन रूप लेके आए ताकि उनको देख के लोग आकर्षित हो चुके। और चैतन्य चरितामृत में बहुत बड़ा वर्णन है कि किस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु को देख के लोग उनसे आकर्षित होते थे। तो एक और चीज है, वे कहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने किसी की योग्यता नहीं देखी। जैसे कृष्ण ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान ने नहीं देखा, बोला मैं बादल के रूप में हूँ, किसी को भी मैं दूंगा मर्सी, क्योंकि अगर मैं सोचूं कि लोग पहले मेरे पास आए तो कोई नहीं आएगा, भगवान को अकेले खड़ा रहना पड़ेगा। तो इसके लिए कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कहते हैं, नहीं जाने स्थान स्थान यारे तारे कैला दान महाप्रभु दाता शिरोमणि। के चैतन्य महाप्रभु वो क्या है, बहुत बड़े दाता है और उन दाताओं में भी शिरोमणि है। तो रूप गोस्वामी एक बहुत अच्छा श्लोक बोले हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर नमः। तो चैतन्य महाप्रभु को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले नमन कर रहे हैं, नमो महावदन्याय, उनको कहते हैं कि आप बहुत बड़े दानवीर हो, दानी हो। वदन्याय उसको कहते हैं जो दान देता है, और महावदन्याय मतलब उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो। तो दान किसको मिलता है और दान पाने का योग्य कौन है, तो ये भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। नहीं तो दानी होगा लेकिन अगर पात्र बराबर नहीं है तो दान ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो जैसे एक भक्त बता रहे थे कि मुंबई में भिखारी लोग होते हैं ना, जो दान मांगते हैं, भीख मांगते हैं। तो जैसे ही वो सिग्नल पे जनरली खड़े रहते हैं रोड पे, बॉम्बे में आपने देखा रहेगा, तो जैसे ही रेड सिग्नल होता है तो उनका ग्रीन सिग्नल शुरू हो जाता है, वो अपना भीख मांगने लगते हैं। तो जाके ना ठोक ठोक के लोगों की कार में से दरवाजा नीचे करवाते हैं और कुछ मांगते हैं कि कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। तो ऐसा तो एक बार एक बहुत बड़ी ऐसी कार आके रुकी रेड सिग्नल पे, तो एक भिखारी शुरू हो गया और भीख मांगने लगा। तो जो बॉम्बे से हैं शायद उन लोगों को पता हो कि भिखारियों को भगाने का एक अच्छा तरीका है, बराबर बोला, छुट्टा नहीं है। तो जैसे ही दरवाजा नीचे किया उसने, भिखारी ने पैसे मांगे, तो ये व्यक्ति जो बड़े सूट बूट में लग रहा था, बहुत मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति लग रहा था, तो उसने भिखारी को कहा कि छुट्टा नहीं है, जाओ, छुट्टा नहीं है। तो भिखारी ने सोचा कि यार मैं क्या मांग रहा हूँ इससे, कुछ थोड़ा सा पैसा मांग रहा हूँ और इतना बड़ा गाड़ी लेके इतनी बड़ी कार में बैठा हुआ है और बोल रहा है छुट्टा नहीं है। तो उसको गुस्सा आ गया, तो भिखारी ने बोला छुट्टा नहीं है ये ले। उसने अपने कटोरे से 50 पैसे निकाल के दे दिए, बोले लेके जा जा, मैं छुट्टा देता हूँ तेरे को, तेरे पास छुट्टा नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि चैतन्य महाप्रभु देने के लिए क्या आए हैं और लेने वाला कौन है। अगर किसी की योग्यता है, एक बार किसी ने प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी से पूछा that what was our qualification that you gave us all this devotional aspect, and Prabhupada said that you didn't have any qualification, I created qualification in you so that you can accept bhakti. तो कोई हमारे में योग्यता नहीं है। एक बार लोग लड़ाई कर रहे थे, ये डिवोटी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो डिवोटी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये डिवोटी ऐसा करता है, वो डिवोटी ऐसा करता है। प्रभुपाद बोले रुको रुको, तुम में से डिवोटी कौन है पहले ये बताओ। Nobody is devotee. I am the only devotee in ISKCON. You are only wearing the dress of a devotee. तो प्रभुपाद जी बताएं उनको। तो कोई devotee नहीं है, हमारी कोई योग्यता भी नहीं है। कई बार ड्रेस पहन के बैठ गए, तिलक लगाया, कंठी लगाया, लोग हरे कृष्णा कहते तो हमको लगता मैं 2 इंच ऊपर हूँ। और इस तरह का ड्रेस देख के लोग हमारे पास आते हैं तो हमको चांस मिलता है प्रचार करने का, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि उन्होंने हमको इस तरह का योग्यता दी है, नहीं तो हमारे में कोई योग्यता नहीं है। तो चैतन्य जैसे योग्यता के लिए भी क्या होता है कि हमको कोई चीज मांगना नहीं होता। जैसे बॉम्बे में एक और एपिसोड है कि एक व्यक्ति रोज जाता था और एक भिखारी बैठा रहता था, उस भिखारी को रोज 5 रुपए देता था वो। तो 5 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है बॉम्बे में, तो 5 रुपए उसको देता था और वो भिखारी रोज लेता था। फिर एक हफ्ते की छुट्टी पे चला गया वो व्यक्ति और 7 दिन के बाद आया तो भिखारी कटोरा लेके आ गया, बोला 35 रुपए। तो बोला 35 रुपए काहे के, तो बोले एक दिन का 5 रुपया, 7 दिन आपने दिया नहीं ना। तो उसने भगा दिया, अपनी योग्यता खो बैठा। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मैं डिवोटी हूँ और भक्ति कर रहा हूँ, मेरे में सब गुण है, तो सारे के सारे गुण चैतन्य महाप्रभु वही खलास कर देंगे, बोलेंगे जा कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। तो इसके लिए ये समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु देने के लिए क्या आए हैं। तो वे क्या कहते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते। रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आप क्या देने के लिए आए हो, आप कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हो। और कृष्ण प्रेम ये बहुत ही अमूल्य वस्तु है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये ऑर्डिनरी नहीं है, उस युग का तो है ही नहीं। तो कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं, भगवान कृष्ण किसी को भी मुक्ति दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते हैं, कृष्ण प्रेम किसी को नहीं देते हैं। तो समझना चाहिए कि जो चीज वो देने के लिए आया है वो पारसमणि से भी मूल्यवान है, और उस चीज को ग्रहण करने की पात्रता क्या है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य चरितामृत में सिंह कहा गया है कि वो सिंह राशि में पैदा हुए थे, चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे सिंह राशि में। तो चैतन्य सिंह, चैतन्य सिंहर ग्रीव सिंहर हुंकार ऐसा बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो एक सिंहनी जो होती है उसका दूध जो होता है वो कोई पी नहीं सकता सिंह के अलावा, और कोई नहीं पी सकता उसको। इंडिक पात्र जो है उसको नॉर्मल पात्र में भी नहीं रख सकते। अगर सिंह का एक दूध जो है वो मटके में रख दो तो मटका फूट जाएगा, इतना पावर होता है उसके अंदर, इतनी गर्मी होती है उसके अंदर। तो उसको लेने के लिए सोने का पात्र चाहिए। तो वैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, कृष्ण प्रेम है, ये हर किसी पात्र में फिट नहीं हो सकता। उसके लिए हमारे हृदय को उस तरह का पात्र बनना पड़ेगा। पहले तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा पात्र ही उल्टा है, हमने उल्टा करके रखा है कि कोई चीज उसके अंदर आ ही नहीं सकती। और किसी किसी का पात्र सीधा भी है, जैसे जो भक्त यहाँ पर बैठे हैं, मैं आशा रखता हूँ कि उन लोगों का पात्र सीधा है। तो सीधे पात्र के अंदर वो सिंह का दूध आ नहीं सकता, पात्र फूट जाएगा। और हमारे पात्र में तो छेद है, कितने छेद है, बहुत सारे हैं, लेकिन छह प्रोमिनेंटली है ना, बहुत सारे। तो इतने सारे छेद के साथ ये चीज अंदर आ नहीं सकती। तो इसके लिए हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर भी कह के आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को जैसे कह रहे हैं, वो कहते हैं कि अरे तुम मुझे महावदन्याय क्यों कह रहे हो। तो वे प्रभु कहते हैं क्योंकि आप कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहा हूं, लेकिन मैं तो काले रंग का नहीं हूं, मैं तो श्याम वर्ण का नहीं हूं, मैं तो गोरा हूं, तो मैं कृष्ण कैसे हुआ। तो वो कहते हैं कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कि आप कृष्णाय हो, आपने कृष्ण का भले रंग छोड़ दिया है लेकिन हम आपको बराबर पहचानते हैं। और बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य ने दिया है कि किस तरह से आप भगवान को पहचान सकते हो, और उदाहरण दिया है एक कुत्ते का। तो कुत्ता जो होता है वो मालिक कैसा भी ड्रेस पहन के आए वो पहचान देता है कि नहीं। और कैसे पहचानता है वो कुत्ता, सूंघ के। मालिक कोई भी रूप में आएगा कुत्ता उसको पहचान लेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि हमको कृष्ण का कुत्ता बनना है। सर्वस्व तो मार चरणे संपिया, पौड़ी छे तो मार घरे, तुम्ही तो ठाकुर तो मार कुकुर, बोलिया जाना हो मोरे। तो वह कहने लगे कि आप कोई भी रूप में आओ हम आपको पहचान लेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो हमारा पट्टा है ये भी कुत्ते के पट्टे के समान ही है कि हम कृष्ण के दास हैं। तो एक उदाहरण आता है, एक बहुत जबरदस्त घटना घटी थी कि ये हम लोग अभी साउथ इंडिया यात्रा से आए, श्रीरंगम में रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कई वर्षों तक बंद पड़ा था क्योंकि मुसलमानों ने आक्रमण किया था, और उस आक्रमण की वजह से रंगनाथ जी को छिपाना पड़ा। जैसे आप सभी जानते हैं जयपुर के जितनी भी वृंदावन के जितनी भी जो प्रमुख डीटीज है उनको जयपुर लाया गया, उसी तरह रंगनाथ जी को तमिलनाडु से कर्नाटक ले जाया गया था और कर्नाटक में वहां पर उनको छिपा के रखा गया। तो बाद में कई वर्षों के बाद, 50-60 वर्षों के बाद जब रंगनाथ जी को वापस लेके आए, तो कई लोग तो एक्चुअली श्रीरंगम में भूल चुके थे कि रंगनाथ जी कौन है। कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम था कि श्रीरंगम नाम आया कहां से। तो ये सारी चीज वो लोग भूल चुके थे क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता है लोग भूलते जाते हैं, तो भूल चुके थे। लेकिन श्री वैष्णव जो थे वो चाहते थे कि रंगनाथ जी को वापस यहाँ पर स्थापना होनी चाहिए अभी। तो कुछ लोगों ने इस तरह की जिज्ञासा की और कहने लगे कि हमको कैसे मालूम जो तुम रंगनाथ लेके आओगे वो असली है, हमको असली रंगनाथ की पहचान कैसे करोगे वो बताओ। तो सोचने लगे कि अभी कोई व्यक्ति है ही नहीं, कैसे पहचाने रंगनाथ जी को। तो बहुत ढूंढ ढांड के पता लगाया कि बहुत ही वृद्ध व्यक्ति था जो उस 7 साल पहले भी था रंगनाथ जी के समय और अभी भी उपस्थित है। तो उसको लाया गया, बोला कि तुम कम से कम रंगनाथ जी को पहचानो। लेकिन उसके साथ बेचारे के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ कि वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी दृष्टि जो थी वो जा चुकी थी, वो देख नहीं पाता था भगवान को। तो देख नहीं पाया तो बिना देखे कैसे पहचानेगा। तो उसने कहा आप चिंता मत करो, मैं भगवान को पहचान लूंगा क्योंकि मैं भगवान का धोबी था, तो मैं भगवान के कपड़े धोता था, आप भगवान को लेके आओ। और उसने कपड़ा लिया और पुजारी को कहा कि इस कपड़े को भगवान के छाती पर रगड़ो और रगड़ के मेरे को लाके दो, मैं बताऊंगा भगवान सही है कि नहीं। तो जैसे ही वो कपड़ा लाया उसने उस कपड़े को सूंघा और तुरंत उछल पड़ा
और उछल के कहने लगा कि यही रंगनाथ है, यही रंगनाथ है, श्री रंगनाथ स्वामी की
जय।
तो उसने रंगनाथ को पहचान लिया। तो उसी तरह रूप गोस्वामी कहते हैं कि आप कोई भी रूप लेके आओ, काला रूप लेके आओ, लाल रूप लेके आओ, पीला लेके आओ, गोल्डन लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे को, हम तुमको अच्छी तरह से पहचानते हैं, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। तो वे कहते हैं कि इसी तरह कृष्ण जो है वो आकर्षते इति कृष्ण, तो गौरांग महाप्रभु है वो भी आकर्षित कर रहे हैं हम सब लोगों को। तो भगवान का भक्त जो है वो भगवान को अच्छी तरह से पहचान लेता है और फिर लोगों को भगवान की सेवा में लगाता है। जैसे जयानंद प्रभु का उदाहरण आता है कि जयानंद प्रभु कई लोगों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। शायद मेरे ख्याल से मैंने बुक में पढ़ा था कि जयपताका महाराज को पहली सेवा जयानंद प्रभु ने दी थी रथ बनाने के लिए। तो कई बार जयानंद प्रभु अपनी गाड़ी वाड़ी ठीक करते रहते हैं और लोग इधर उधर जाते रहते हैं, तो उनको लगता है यार ये कोई सेवा नहीं कर रहा भगवान की, इनको सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान की शक्ति, आप मुझको आपकी सेवा में लगाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं और क्या सोचते हैं कि हे भगवान कृष्ण, हे राधा रानी, इनको अपनी सेवा में लगाओ, मेरे को मत लगाओ अभी, उसको बहुत जरूरत है। तो वो लोगों को सेवा में लगाते थे, तो कोई जाता रहता था तो किसी को कहता है सुनिए 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 थोड़ा हेल्प कर दीजिए। और अमेरिका में क्या, किसी को हेल्प करना मतलब बहुत अच्छा लगता है, इंडिया में लोग भाग जाते हैं, हेल्प करना नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका में अपना सौभाग्य समझते हैं। तो बोलते हैं ये पाना जरा दे दो, ये पाना ठीक करना है गाड़ी में। तो पाना लेके आता, फिर उसको बोलता है मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, थोड़ा नट बोल्ट खोल दो। तो वो नट बोल्ट खोलने लगता है। जयानंद प्रभु बहुत अट्रैक्टिव थे, बहुत बातें करते, अच्छा आप कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कितने साल से, ऐसा वैसा बातों में फंसाते हैं। और वो बेचारा धीरे धीरे नट खोलते रहता है, लेकिन उसको समझता नहीं कि उसके कर्म बंधन खुल रहे हैं धीरे धीरे। और जयानंद प्रभु एकदम उसको ऐसा जकड़ में लेते थे और पहले पाना थमाते थे, बाद में भीड़ भाड़ थमाते थे, बोलते अब जप कर। तो इस तरह कई लोगों को उन्होंने भक्ति के अंदर लगाया। तो जो भक्त होता है वह खुद आस्वादन नहीं करता, दूसरों को भी देना चाहता है। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु आए कृष्ण के रूप में और उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण के रस का आस्वादन करना चाहता हूँ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अकेले आस्वादन करके कोई मतलब नहीं है, मैं दूसरों को भी बताता हूँ। इसके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अपने कर आस्वादन सिखाई ला भक्त गणे प्रेम चिंता मणि प्रभु दानी। प्रेम चिंता मणि नहीं जाने स्थान स्थान यारे तरे कैला दान महाप्रभु दाता शिरोमणि। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये बहुत बड़े दाता है, दाताओं के शिरोमणि है, सभी को कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं फ्री में। तो वह रूप गोस्वामी को कहते हैं कि अगर कृष्ण है तो कृष्ण ही तो प्रेम बांट सकते हैं, मैं कैसे बांट सकता हूं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, कृष्ण इतना आसानी से प्रेम नहीं बांटते, क्योंकि वो क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच। पहले भगवान कंडीशन लगाते हैं, क्या बोलते हैं कि पहले आके मेरे को सरेंडर करो, तब मैं जाके तुम्हारे को मुक्त करूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं कि किसी को देखते नहीं है, जो भी आया ना ही देखी स्थान स्थान यारे तारे कैला दान, जो आया उसको दे दिया, बोला लेके जा। तो इस तरह से वो दान कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि आप बहुत बड़े शिरोमणि हो, दाता शिरोमणि हो। सो हमको ये चीज समझने की आवश्यकता है थोड़े में कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ये दान कर रहे हैं और ये लोगों को दे रहे हैं, और उनकी कृपा से नित्यानंद प्रभु दान कर रहे हैं। इसके लिए वो दलालेर गीत जो है उसके अंदर वो कहते हैं कि बड़ो दयाल नित्यानंद, बड़ो दयाल नित्यानंद, श्रद्धा मात्र ले देना परम आनंद। वो परम आनंद देते हैं सिर्फ श्रद्धा लेके, और हर तो एक श्रद्धा की जरूरत है, फेथ की जरूरत है। छोटा सा अगर फेथ जो है वो अगर हम भगवान श्री कृष्ण को देंगे, चैतन्य महाप्रभु को देंगे, तो हमारे को भक्ति मिलेगा। अभी समय हो चुका है तो एक छोटी सी स्टोरी है चैतन्य महाप्रभु की, दाता शिरोमणि कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु इतने महान दानी है, उसके बारे में एक वर्णन आता है कि जब वो दान के बारे में कर रहे हैं तो एक बार ऐसा हुआ कि एक राज्य में एक राजा ने घोषणा की, बोले कि आज मैं बहुत खुश हूं और मेरे राज्य में ये घोषणा करता हूं कि जिसको जो कुछ भी चाहिए वो लेके जाओ, जो मांगोगे वो मिलेगा, जिसको जो चाहिए वो लेके जाओ, कुछ शर्माने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, केवल आके मांगो और लेके जाओ। तो सारे के सारे लोग आ गए और लाइन लग गई ना, कोई भी चीज जहां पर फ्री में वितरण होता है भारतवासी पहले वहां पहुंचते हैं। एक बार कुंभ मेले में पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर का एक स्टॉल लगा, भक्तों ने लगाया वहां पर। तो सबसे पहला एक व्यक्ति आया और पहला क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, एंसर फ्री में है क्या?
तो बोला हाँ फ्री में, फिर 10 लोग को बुलाया, बोला आ जाओ, कोई चार्ज नहीं करेगा। तो जो भी चीज फ्री में मिलती है हम लोग माइंड लगा लेते हैं कि ठीक है चलो फ्री में मिल रही है ले लो। तो राजा इस तरह से घोषणा करता है, पूरी बड़ी लाइन लग जाती है और लोग लाइन में आके खड़े रहते हैं और जो चाहते हैं वो लेते हैं। तो राजा कहता है कि आप सिर्फ पात्र घर से लेके आओ, जो चाहिए वो मिलेगा। आप छोटा पात्र लेके आओगे तो छोटी वस्तु प्राप्त करोगे, बाल्टी लेके आओगे तो बड़ा चीज मिलोगे, टंकी लेके आओगे तो और बड़ा चीज मिलेगा, जो चाहिए वो लेके आओ। तो सब लोग पाके बड़े खुश हो रहे थे। तो राजा ने देखा और बड़ा खुश हो रहा था राजा भी, लेकिन उसने देखा कि एक व्यक्ति बड़ा मायूस सा खड़ा है, मायूस लग रहा है। तो राजा ने सोचा यार सब लोग इतने खुश है और मैं दानी की तरफ दान देता जा रहा हूँ, लेकिन ये व्यक्ति मायूस क्यों है? उसको जिज्ञासा हुई, जाके पूछने लगा और उससे कहने लगा कि अरे आप मायूस क्यों हो? सब कुछ मिल रहा है, आप क्यों नहीं लेते हो? तो उसने कहा कि मैं मायूस इसलिए हूं क्योंकि मैं आपका दान स्वीकार कर पाने के योग्य नहीं हूं। तो राजा ने कहा अरे योग्यता की क्या बात है इसमें, आके सिर्फ मांगना ही तो है, तुम मांगो और मैं तुमको दूंगा। तो वो कहने लगा कि नहीं, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास पात्र भी नहीं है, तो बिना पात्र के मैं आपका दान कैसे ग्रहण कर सकता हूं? तो मेरे में वो योग्यता ही नहीं है कि मैं आपका दान ग्रहण कर सकूं। और फिर राजा को चमका और बोला कि देखो मैं देने में अपने आप को इतना दानी समझ रहा था, लेकिन मेरे दान में भी इस व्यक्ति ने मुझको कुछ सिखाया है। तो फिर राजा को समझ में आया, राजा ने दूसरी घोषणा की, बोला कि ठीक है किसी के पास अगर पात्र नहीं है तो शर्माने की जरूरत नहीं, आप आ जाओ, पहले आपको पात्र मिलेगा और बाद में आपको दान मिलेगा। तो पात्रता नहीं देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण आके कहते हैं पात्रता चाहिए, पात्र है, बड़ा पात्र है तो बड़ी चीज मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु आए और कहते पात्र भी नहीं, मैं पात्र दूंगा तुम्हारे को, पात्र पात्र न देखी न देखी मूर्ति, कुछ नहीं, पात्रता अपात्रता नहीं देखी, जगाई मधाई जैसे लोगों का उद्धार कर दिया, तार साक्षी जगाई मधाई, तो ऐसे लोगों का उद्धार कर दिया जो सबसे पापी अधम थे। अगर कोई सोचे कि मैं बहुत अधम हूं और इसलिए भक्ति नहीं करता हूं तो उसको जगाई मधाई का फोटो लगा के उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा उस समय का पापी और कोई नहीं था। उन लोगों का उद्धार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने कर दिया। तो वो अपने को ये पात्र दे रहे हैं और पात्र देने के देकर दान दे रहे हैं और उस पात्र के अंदर इतना रस उमेड़ रहे हैं और इतना रस दे रहे हैं और कहते हैं आस्वादन करो, और हम लोग उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो हमारा हृदय जो है कम से कम वो हमको उस पात्र की तरह बनाना चाहिए जिसके अंदर वो रस भर सके और उस रस का हम आस्वादन कर सके, नहीं तो ये जो हमारी जिह्वा है वो इसी तरह हम लोगों को दिखाते रहेंगे और कुछ आस्वादन मिलेगा नहीं हमारे को। तो इसलिए, और ये हृदय की पात्रता को इसको किस तरह से पात्र बना सके, चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टकम में बताया है, तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, कि हम लोग अगर एक तृण से भी नम्र बने, एक वृक्ष से सहनशील बने, दूसरों को मान दे और मान के आशा न रखे, तो हमारा हृदय जो है वो उस पात्र की तरह बन सकता है जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु अपना रस उड़े लेंगे और उस रस को उमेड़ रहे हैं, और कई बार वो रस उसमें से गिर रहा है नीचे और उस रस के अंदर ही लोग नृत्य कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु ये रस वितरण कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिवरांग महाप्रभु की
जय,
श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की
जय,
श्रील प्रभुपाद की
जय,
निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।